نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دور قرآن 2023 میں آج کنٹینیو کریں گے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کو. الحمدللہ اس سال چونکہ ہمارا دور قرآن صحابہ کرام سے متعلق ہے اور صحابہ کرام کے تذکروں سے بھری ہوئی صورتیں سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ آگے بھی آئیں گی, لیکن بیچ میں بہت سے آپ کو ریلیکسیشن بھی ملے گا. ایک اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے کہ جو گولی جتنی چاہیے اتنی دے اور جو کم چاہیے وہ کم دے. آپ کبھی پرسکرپشن دیکھے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ گولی صبح شام کھانی ہے, یہ 3 ٹائم کھانی ہے, یہ 2 کھانی ہے. اسی بات کے پیسے لیتے ہیں ڈاکٹرز. باقی اصل کام کون کرتا ہے؟ اصل کام تو پھر وہ جو ہیں ڈسپنسری پہ ہوتے ہیں, وہ کرتے ہیں نا, اس کے نسخے کو لے کر آپ کو گولیاں دے دیتے ہیں. لیکن صرف اتنی سی بات پہ اب لائنوں میں لگ جاتے ہیں کہ جی دوائی لکھانی ہے. میری نظر میں ایک داعی دین اور ایک اللہ کی طرف بلانے والے کا کام بھی ڈاکٹر کے کام سے کم نہیں ہوتا. کس وقت کس ٹاپک کی کس کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے. اس سال الحمدللہ ہم نے ڈے وائز اس کو رکھا, تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ 2.5 گھنٹے کے 30 پارے کر دیں, اور ایک یہ ہے کہ جس دوا کی زیادہ ضرورت ہے اس کو زیادہ لیں. اور الحمدللہ صحابہ سے ریلیٹ کر کے آپ کو شاید پہلی دفعہ یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ سورۃ توبہ میں اتنا کچھ ہے. تو آج 3rd day ہے جس میں ہم یعنی 10th pare کے ایک حصے کو کنٹینیو کر کے انشاءاللہ آج 11th pare پہ جائیں گے. آئیے دعا کرتے ہیں کہ ہماری بھی ایمانی صحت ہو جائے. صحابہ کی جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے تربیت کروائی تھی, آپ کی اور میری بھی یہی ہونے لگے. تو ہم اس پارے میں سے جو ٹاپک تھا احقاق حق اور ابطال باطل اور صحابہ کی عظمت کیا تھی کہ تاریخ ساز تھے خود ساز نہیں تھے, تو آخر ہم بھی تو کچھ کر کے جائیں. اب تو تڑپ لگ گئی ہے کہ اللہ کچھ کر کے جانا ہے, ورنہ ہم نے نہیں جانا, ابھی نہیں بلانا, ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ بدری صحابہ اور ہم اس بارے میں جو 10 صحابہ کے تذکرے اور ان کے بدر میں بھی شامل ہونے اور عشرہ مبشرہ ہونے کی خوبیاں پڑھ رہے ہیں, تو محنت تو کچھ کرنی پڑے گی نا. تو آئیے دیکھتے ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 سے شروع کریں گے. اس سے پیچھے کا حصہ ہم کر چکے, رکوع نمبر 14 ہے, آیت 60-66. زکوٰۃ کے مصارف, بڑی اہم آیت ہے. ایک ایسی فقہی نوعیت سے لوگ اکثر سوالات کرتے ہیں کہ کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کس کو نہیں دی جا سکتی, تو یہ آیت اس کا بہترین موقع ہے جس پہ آپ دیکھ سکیں. ان نمت صدقات للفقراء والمساکین, صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے ہیں, اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے, اور ان کے لیے جن کے دل پر چائے جاتے ہوں یعنی جن کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالی جاتی ہو, اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے, اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے فرض ہے. یہ لفظ فرض بتا رہا ہے کہ یہ آیت زکوٰۃ سے متعلق ہے, ورنہ صدقہ تو نفلی بھی ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے اور اللہ علم اور حکمت والا ہے. ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کان کا کچا ہے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایزی گوئنگ تھے, ہر ایک کی بات سن لیتے تھے, جو چاہے کھڑا کر کے آپ سے بات کر لے. ایک خوبی تھی, کیونکہ ایک لیڈر کو بہت ہی انسان دوست ہونا چاہیے, عوامی لیڈر ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن منافقین نے اس بات کو بنیاد بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانوں کا کچا کہہ دیا. اس پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہر ایک ان تک پہنچ جاتا ہے, یہ اپروچیبل ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے حق میں بہتر ہے, آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں. نبی کی خوبیاں تو دیکھو کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے, یعنی اب بڑی جلدی ٹرسٹ کر لیتے تھے, جس کو آج کی زبان میں کوئی کہے کہ باتوں میں بڑی جلدی آ جاتے تھے. اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے. محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں, حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے. کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے, اور یہ زبردست رسوائی ہے. منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے. کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو, یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جسے تم ڈر اور دبک رہے ہو. اس آیت کا نمبر نوٹ کر لیجئے, निफाक वाले दिल के साथ कुरान नहीं सुना जा सकता, सादा कुरान पढ़ा जा सकता है, तीन तीन पारे भी आप कुरान खानी में पढ़ लेंगे, लेकिन वो कुरान जिसमें तफसीर हो, जिसमें अमल के नुक्ते हों, अनकंफर्टेबल फील करने लगता है इंसान। अगर आपको मुझे किसी लम्हे भी ऐसा एहसास हो तो फिर ये करने के बजाय कि सुनना छोड़ दें, बल्कि उस वक़्त दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे अमल को पुख्ता कर दे। अगर आप इनसे पूछें तो साफ कह देंगे कि हम तो यूं ही आपस में हंस बोल रहे थे। कह दीजिए कि अल्लाह उसकी आयतें और इसका रसूल ही तुम्हारे हंसी मजाक के लिए रह गए, तुम बहाने ना बनाओ, यकीनन तुम अपने ईमान के बाद बेईमान हो गए हो। अगर हम तुम में से कुछ लोगों से दरगुजर भी कर लें तो कुछ लोगों को इनके जुर्म की सज़ा भी देंगे। तबूक से वापसी पे रास्ते में गपशप करने लगे, बेकार बातें, और उसमें अल्लाह और रसूल का मजाक, और क्या देखो जी ये क्या है, इनमें से तो कोई भी बाकी नहीं आएगा बचेगा, यानी खास तौर पे वो लोग जो घर पीछे रह गए थे ना, तो वो शाम को फिर चौपालों में तबसरे करते थे, ज़रा क्या बना, ज़रा चेक करो, ज़रा खबरें तो सुनो, न्यूज़ चैनल देखो, और उनको पूरी उम्मीद थी कि एक खबर छपेगी कि मोहम्मद अपने सारे लश्कर के साथ तबाह व बर्बाद कर दिए गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नौज़ुबिल्लाह इतनी बड़ी रोमन पावर, इतनी बड़ी सुपर पावर उसके पास गए हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपनी ये बातें घर रखो। याद रखिए जो काम करते हैं ना उनके इस बातों का वक्त ही नहीं होता, ना दावों का, ना तनकीद का और ना तारीफ का। आप किसी भी जगह जाएं और वहाँ सब लोग अपने अपने डेस्क के साथ लगे काम कर रहे, देख रहे, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर से कर रहा है, कोई कुछ, आपको क्या लगेगा कि यहाँ कुछ काम हो रहा है? आप एक किसी और ऑफिस में जाएं जहाँ किलो काल है, चाय पी जा रही है, हल्ला है, गुल्ला है, आप कहेंगे क्या मूड है आज? ज़रा सा सोचिए कि उम्मत मुस्लिमा का क्या हाल है। क्या हम खामोशी से काम कर रहे हैं, या हम सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेज आगे से आगे और ट्विटर से ट्वीट कर रहे हैं? काम कीजिए, छोड़ दें लोगों को, जो वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। तो यहाँ तरतीब से अगर चलें तो सबसे पहले हमने सदक़ात यानी ज़कात के बारे में बात की, तो ज़कात के 8 मसारिफ़ हैं, मुख्तलिफ नाम क्यों हैं फ़र्क नोट कर लीजिएगा। फ़ुकरा कहते हैं जिनके पास कुछ ना हो उनको, मसाकीन कहते हैं जिनके पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी चीज़ें ना हो, यानी मस्कन सकन वक्त रुका हुआ है, महीने का शुरू तो ठीक होता है लेकिन आखिरी दिनों में मुश्किल है, हैंड टू माउथ, सफ़ेद पोश जिनको कहते हैं। आमिलीन जो हुकूमत की तरफ से सदकात की वसूली और उसके हिसाब किताब पे मामूर हों, यानी वर्कर्स हैं, उनको पे किया जाएगा तभी तो वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम करेंगे। फिर मुअल्लफ़तिल क़ुलूब, तालीफ़ क़ल्ब इस्लाम का एक अबदी असूल है, खैर ख्वाही के साथ दिल में नरम गोशा, यानी सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की एक पुरअमन तदबीर है, यानी वो नॉन मुस्लिम जो अभी दिल से तो थोड़े थोड़े इस्लाम की तरफ आ गए हैं लेकिन अभी ज़ुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं आया, तो मुसलमानों के हुस्ने सलूक से उनके दिल में कुर्बत पैदा होगी, फिर वो एक बैलेंस दिल के साथ जहन के साथ इस्लाम का मुतालिया करेंगे और किसी तासुब के बगैर खुले जहन से इस्लाम को कबूल कर लेंगे। ऐसे तमाम लोगों के लिए अगर आप कुछ भी देते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, और यकीन कीजिए कि आज अगर हम मुसलमान अपनी और चीज़ों को छोड़कर इस पे भी लगाने लग जाएं तो इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैले। फिर इसके बाद अगला नाम है रकाब, गुलामों की आज़ादी। अब आज गुलाम नहीं है, कुछ ने कहा उस पे कैदियों को आज़ाद कर दीजिए, कोई बेगुनाह कैदी पड़े हुए हैं जेलों में तो उनका फ़दिया दे दें। फिर गारमीन जो मकरूज हो गए, या फिर जिन पर ज़मानत का बोझ हो, किसी की उन्होंने ज़मानत भरी थी लेकिन बाद में वो अपने सर पे पड़ गई, लेकिन इससे ख्वाहिशों के कर्जदार नहीं है। अक्सर लोग जब ये सवाल करते हैं कि हमारे तो अपने ऊपर कर्ज़ है तो फिर हम भी ज़कात दें, तो मैं कहती हूँ फिर आप ज़कात ले लें, आप 2-3-4 लाख डॉलर के घर में बैठे हुए हैं तो आप ज़कात लीजिए क्योंकि गारमीन है। अल्लाह अकबर कबीर। और गुलाम किसको कहते हैं? टोल टैक्स को, आगे पढ़ेंगे सूरत काहफ में। बहरहाल सबीलिल्लाह का लफ्ज़ बहुत ही इसमें वसत है, दावत दीन और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, ये दो लफ्ज़ जोड़ लें तो फ़ी सबीलिल्लाह। और सुबुल रस्सी को कहते हैं, रस्सी का एक सिरा अल्लाह की तरफ है और एक बंदों को दे दीजिए हर वो एफर्ट जिससे लोग अल्लाह से जुड़ें। क्या आप कुरान पढ़ने के बाद अल्लाह से जुड़ रहे हैं? क्या इस सारी एफर्ट को आप अल्लाह की रास्ते के एफर्ट समझते हैं? तो सवाल किधर रह गया फिर? मैं कहती हूँ आज तो आप अपना पैसा दीन पे लगा दें क्योंकि इस पे लगाने वाले बहुत थोड़े हैं, खिलाने पिलाने वाले बहुत हैं और इसी तरह घर बनवा कर देने वाले भी बहुत हैं, लेकिन असल में इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दीन से लोगों को जोड़ना, और कोई काम पैसे के बगैर नहीं होता। यहाँ से अगर हम पैसा खींच लें तो हमें से एक भी यहाँ ना बैठा हो, तो जाहिर है हमारी कोशिशें, हमारे वक्त इस सब में मदद करते हैं के बावजूद माल के साथ भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जगह चाहिए होती हैं, एफर्ट्स चाहिए होती हैं। अब इस वक्त देखिए कि डिफरेंट जगहों पे हमारे छोटे बड़े स्कूल हैं, यकीन करें कि ऐसी जगह भी है कि जहाँ वो बिजली का बिल भी नहीं पूरा दे पाते। क्या हम में से कोई पूरे साल का बिजली का बिल नहीं दे सकता? कोई वहाँ के किसी गैस की बिल का नहीं दे सकता? कोई ज़रूरी तो नहीं कोई बहुत करे। कई जगह हैं जो रेंटेड हैं, हर महीने का रेंट मेरी तरफ से, क्या बड़ी बात है, मैं तो याद भी नहीं रहेगा। और ख़ास तौर पे बाहर के मुल्कों में तो ऑटोमेशन पे लगा देते हैं। तो ज़रूरत है इस बात की कि इस वक्त वो काम किया जाए जिसकी इस वक्त ज़रूरी है। और याद रखिए कि ये बांट उस वक्त होगी जब मुल्क में वाकई इस्लाम को डोमिनेंसी मिलेगी। आज ही जो हम अपनी ज़कातें अपनी मासियों को बांटते हैं ना, ये दुरुस्त नहीं है। ऊपर से उनको जो खिलाते पिलाते देते लेते कपड़े लत्ते, पीछे पता चलता है ये ज़कात के हैं। वो भी खुश रहती हैं कि चलो बाजी भी हमें देती रहती है। ज़कात असल में एक कॉमन फैक्टर था, बैतुल माल में सब डालते थे, वहाँ से जाता है। यही असूल आज भी किसी भी एक कामयाब इंस्टीट्यूट का होगा कि आप मेन चीज़ के साथ जोड़कर हर चीज़ पहले उसमें डालें फिर वहाँ से निकलें। जवाबदेही का एहसास इंसान को सीधा कर देता है। हर आने वाले दौर के लोगों में आप जैसा ईमान नहीं होगा, आप जैसा तकवा नहीं होगा, तो हर इनकम और एक्सपेंस नोट हो और जहाँ फिर जिसकी ज़रूरत है उसको दिया जाए। वरना तो आपको पता नहीं है कि एक बोतल की जगह 6 बोतलें खुलती हैं और लिख दिया जाता है मेहमानों को पिलाया था, फिर क्या करेंगे? 2 मेहमान आते हैं, आप 10 का खाना बाजार से मंगा लें, खर्चे में डाल दीजिए, मेहमानों को खाना खिलाया था। ये तकवा के बगैर नहीं होता। लिहाजा अपने हर इंस्टीट्यूट, हर इदारे, हर मस्जिद और हर ऐसी जगह जहाँ भी कोई इज्तिमाई चीज़ है उसको मेन से जोड़िए। फ्रेंचाइजेशन इसी को कहते हैं। क्वालिटी कंट्रोल भी रहता है और आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आती। आपको जो चाहिए उनसे पूछिए, उनको बताइए, कोई आपने अपनी ज़ात पे तो लगाना नहीं है। लिहाजा ऐसी चीज़ें अपने ऊपर रिस्क में डालना, मैं अपना ज़ाती नंबर दे दूँ, मुझे इसमें पैसे डाल दें, मेरे जैसा बंदा जिसको अपने पैसे की खबर नहीं है वो आपके पैसे की हिफाजत कहाँ करेगा? कल मैं मर गई वो मेरा वरसा बनकर सारे बांट देंगे, किसको पता था कल आया और आपने तो सारा लिखा है, लेकिन आपके लिखने से पहले मौत आ गई तो उसका क्या होगा? अब तो आपको हमेशा मनी फ्री रखिए। इसलिए लाइबिलिटी से बचने की बात दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने इधर बता दी। और याद रखिए कि शिकायतों से बचने का भी एक खूबसूरत तरीका है, आप अपने मनी ट्रैक को सीधा रख दें। आपके मरे मुल्कों में गिला किस बात का है हुकूमतों से लोगों को? ये एहतसाब कमेटियाँ क्यों बनती हैं? टैक्स क्यों नहीं लोग देना चाहते? ये सारी बेकायदगियाँ हैं। आप बाहर की दुनिया का निज़ाम खोल कर देखिए, जिस तरह वो टैक्स लेते हैं ना, अगर हमारे मुल्कों में ज़कात इस तरह ली जाए ना, तो आपका ये मुल्क चले पॉवर्टी की रेंज से तो बहुत ऊपर चला जाएगा, दूसरों को देने वाले बनेगा। एक तरफ हम अल्लाह का हक मारते हैं ज़कात नहीं देते, और दूसरी तरफ हम बंदों का हक मारते हैं टैक्स नहीं देते। आज हमारे हुक्मरानों के ऊपर करप्शन के केस क्यों हैं? क्योंकि हिसाब नहीं है, आने का नहीं पता, जाने का नहीं पता, सिस्टम से गुजारिए। 1 करोन 1 डॉलर, 1 पाउंड 1 यूरो आप इधर से उधर कर नहीं सकते बाहर के मुल्कों में रहते हुए। और जो करते हैं, आपको तो शायद बड़ी तीन सजाओं में से, बिगेस्ट सजाओं में से एक सज़ा टैक्स चोरी है नॉर्वे में। वहाँ के जो लोग टैक्स चोरी करते हैं ना, करते हैं, हमारे लोग आदी हैं वो माशाल्लाह, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाता, वो नॉर्वे वाले इधर आके आपके घरों के सारे तहमीने लेके जाते हैं। और लोग भी, रिश्तेदार बड़े शौक से बताते हैं, ये फलां की कोठी, ये फलां की हवेली, ये हुआ रियल में। आप रिपोर्ट इसकी जाकर ऑनलाइन से पढ़ लें, लोगों ने कहा ये फलां की है, ये हमारे फलां हैं जी, बाहर से पैसे भेजे। अच्छा कितने भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, किस मनी एक्सचेंज पे? उन्होंने भेस बदल के सारी खबरें ली, वहाँ जाकर एक एक नाम को सर्च करके उसको टैक्स भेजा कि वो जो पाकिस्तान में भेजा हुआ है उसके टैक्स है। तो वलीमों बिजाते सुदूर नहीं भेजेगा आपको मुझे? क्या उनके पास कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंसी है? अल्लाह के पास है। ये सोच आपको एक एक पैनी ज़कात की दिलवाएगी। और आप कभी भी अपने माल को, अपने जेवर को ये नहीं कह देंगी कि वो मेरे तो मियाँ दे देंगे, पता नहीं देते हैं कि नहीं देते। तो बहरहाल ये एक बड़ा हसास मौजू है, इस सारी चीज़ों को रखिए ना, किसी का हक मारिए ना गैर मुनसिफ तरीके से हो, और जब आपके अपने किसी माल की चीज़ हो आप उसकी ज़िम्मेदार हैं, कोई और नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें नबी सल्लम पे इल्ज़ाम अपने पड़े हैं, अगर आप देख रहे थे आयत 61 और उससे आगे, इसको तौहीन रिसालत कहते हैं। याद रखिए, जब दिलों में इज्जत नहीं रहती तो इंसान अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता। मदीना के मुनाफिकीन अपनी निजी महफिलों में इस्लामी शख्सियात का मजाक उड़ाते थे, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, फिर अबू बकर थे, फिर उमर थे, फिर उस्मान थे, फिर अली थे, फिर तलखा थे, और होते होते हर एक के। और जब मुसलमानों की आम महफिलों में आते तो कस्में खाते, हम तो आपके साथ हैं, कितना अच्छा काम करते हैं, अबू बकर कितने नाइस हैं, उमर कितने अच्छे हैं, इस तरह की बातें करते, क्योंकि मुसलमान मदीना में ताकतवर थे और मुनाफिकीन को डर था कि अगर मुसलमानों को हमने खुश ना रखा तो ये हमें नुकसान देंगे, इसलिए डरते थे। तो ये है ड्यूल पर्सनैलिटी, डबल फेसेस, डबल स्टैंडर्ड। मुनाफिक का किरदार खुलकर सामने आता है। याद रखिए कि मुनाफिक की सारी दीनदारी इंसानों के डर से होती है, अल्लाह के डर से नहीं। ये आज का जम बनाइए, और उम्मीद करूंगी कि बहुत सारी इसमें आएंगी चीज़ें इंशाल्लाह। मुनाफिक की दीनदारी, कौन है मुनाफिक? जो अल्लाह के डर से नहीं, लोगों के डर से दीनदार बना होता है। वैसे मौके पर अखलाक और इंसाफ वाला बन जाता है जहाँ इंसानों का दबाव होता है, लोगों की नज़रों में बड़ा बनना होता है, या फिर अवाम की तरफ से कोई अंदेशा लाहक है, कोई ख़तरा है। मगर जहाँ इस किस्म का कोई ख़तरा नहीं होता, सिर्फ अल्लाह का ही डर होता है, तो वो वहाँ बिल्कुल पीछे हो जाता है, बेअमल है। उसकी अकेले की नमाज और लोगों की नमाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और सिर्फ अल्लाह का डर वो चीज़ है जो इंसान की ज़ुबान को बंद कर देता है, इसके हाथ पांव को रोक देता है। और अगर ये डर नहीं है तो वो अकेले में कुछ और दूसरों में बिल्कुल एक दूसरा इंसान होता है। ऐसा बंदा रियल में ना तो बाखलाक होता है और ना इंसाफ का लबरदार होता है। और लिख लीजिए कि ऐसे लोग वो हैं जो मसलतों के गिरफ्तारी हैं। ज़रा सा उनके ऊपर से आप कंट्रोल उठाएं, ज़रा सी उनके ऊपर से एक नज़र हटाएं, कुछ देर उनसे ना पूछें, तो इतनी खुर्दबुर्द हो चुकी होगी कि अल्लाह की बना। इसलिए ऐसे लोग सिर्फ लोगों के डर से या माली मुफादात के लिए ऐसी चीज़ों में लगे रहते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला मुसलमानों को मुसलमानों की बदगुमानी से बचाए। पिछले दिनों एक कोई ब्रदर थे तो वो आपके सर को मिले, और उन्होंने बताया कि उनका काम क्या था। तो महकमा औकाफ़ में वो काम कर चुके थे, उन्होंने अपने जो तजुर्बात सुनाए, आप देखिए कि कानों में से धुआं निकल रहा था। कहता है कि मेरा काम सिर्फ ये था कि मुझे पूरे पंजाब से और इधर उधर जहाँ भी उनका दायरा कार था, मैं जाता था आमतौर पे मजहबी इदारों में, जिसको मदारिस कहते हैं, लोग जामियात कहते हैं, बोर्ड लगाया पड़ा है, और जाके ऐसी बातों ही बातों में देख देख के लाता था क्या हो रहा है। और उनका एक जुमला जिसने मेरा दिल फाड़ दिया, सब पैसे खाने के बहाने थे। कोई चंद अप्रूव्ड बहुत वेल नोन इंस्टीट्यूट ऐसे हमें वहाँ दिखते थे कि जहाँ लख का काम हो रहा था या पूरी दयानदारी से हो रहा था। अक्सर डोनेशन लेने, चंदे लेने, और वही बात है कि मेरी मर्जी, चाबियां मेरे पास है, उठाई जाएंगी नहीं, चाबियां नहीं मैंने छोड़नी, गले की चाबी मेरी, अकाउंट मेरे नाम पे, पैसे मेरे पास आएंगे, मेरे आएंगे। उन्होंने कहा आपको हम क्या बताएं कि हमने कैसे कैसे इदारों से ये खयानतें पकड़ी। मैंने कहा ऐसा क्यों होता है? जब मैंने पूछा तो उनका, बनाने वाले बड़ी अच्छी नीयतों से बना के जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी थी, लेकिन जिन लोगों के बाद आगे से आगे आया उनके पास वो तरबियत नहीं, वो खुदा खौफी नहीं है। इससे तो मैं इतना डर जाती, मेरा कर दिया सब इदारे बंद करके बस कमरे में बैठ जाओ, पर वो भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही सोच, एक सर पे डंडा आप रख सकते हैं अपने ऐसे सब लोगों पे, और वो तकवा है, अल्लाह का खौफ। जवाबदेही का ऐसा, यहाँ नहीं पकड़े जाओगे वहाँ पकड़े जाओगे, और बरकत ही चली जाती है। लिख के रख लें, हर उस चीज़ से ऐसे बरकत उठेगी कि अल्लाह की ना। आप कहेंगे पहले बड़े लोग आते थे अब आते नहीं, पहले लोग बड़ा देते थे अब देते नहीं, अब ये है वो नहीं। एक तो गलत तरीका है ना जो मैंने अभी कहा आपसे, शायद सोचेगा कि ऐसे लोग बेईमान हैं, ये हमेशा नहीं होता। नहीं समझे आप मेरी बात? फिर अगर आप में से किसी ने भी ये सोचा है कि सारे दीनी इदारे वाले बेईमान हैं, नाउज़ बिल, ऐसा नहीं है, केयरलेस है, अथॉरिटीज़ का मिसयूज़ है। मैं हूँ ना, मेरे मर से पूछ के करेंगे, मेरे पे और असूल है, आपके और है, मेरे भाई बहन के लिए कोई और रूल है, आपके भाई बहन के लिए कोई और है, अपने लिए कोई और पैमाने सेट करते हैं, दूसरों को कहते हैं खबरदार हिलना भी ना। यानी सिर्फ केयरलेसनेस, सुस्तियाँ, और दीन के काम को लीस्ट नहीं, सिर्फ सेकंड प्रायोरिटी पे। देखिए लीस्ट पता क्या होता है? सबसे आखिरी सीढ़ी, और सेकंड क्या होती है? ऊपर से दूसरी। इस दीन के काम को सिर्फ उन लोगों के सपोर्ट कीजिए जो कुर्बानी और हिजरतों की छलनियों से गुजर के अपनी जॉब्स छोड़ के, अपनी प्रायोरिटीज छोड़कर, अपना सारा दे दू के खाली हाथ होके बैठ गए। अब अल्लाह कहता है तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, अब मेरा सारा तुम्हारा है। इसके अलावा सिर्फ पार्ट टाइमर और सिर्फ मनी के साथ दूसरी चीज़ों में, अपने कामों में, और इधर भी और उधर भी, ऐसे लोगों से दूसरे काम लीजिए, लेकिन इनको कभी जिम्मेदार ना बनाइए, वरना कल हो सकता है आप पकड़े जाएं। हज़रत अबू बकर की बहुत बड़ी खूबी, जो उलमा कहते हैं कि जिसने अबू बकर को कयस बनाया, और अल्लाह के नबी के एक हदीस में नाम भी अबू बकर का, कि दुनिया में तीन साहिब फरासत लोग गुजरे, मुराद है कि जिन्होंने कोई एक अच्छा फैसला किया उनमें एक अबू बकर थे, क्योंकि उन्होंने उमर को नॉमिनेट किया था। और इसी तरह एक शुएब की बेटी थी सफूरा, जिसने अपने बाप से कहा था कि मूसा को अपने घर में रख लीजिए। और तीसरा अजीज़ मिस्र, जिसने अपनी बीवी को कहा था कि अक्रमी इस यूसुफ को अच्छा बना के रखो, बेटा बना के रखेंगे, काम आएगा। मुरादे के दिनों ने अच्छे लोगों को नॉमिनेट किया, वरना तो आमतौर पे पता ही नहीं चलता कौन खरा है कौन खोटा है। हमें से बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है हमें कुछ काम दिया जाए, हमें आगे बढ़ाया जाए, हम पे ट्रस्ट किया जाए, लेकिन अल्लाह के नबी ने अबू ज़र से कहा था कि अबू ज़र आप बड़े कमज़ोर हैं, कभी माली मामलत में आगे ना आइएगा, क्योंकि रकीकुल कल बड़े थे, जिधर पकड़ा सारे पैसे दे के आ जाते थे। शाम का खाना अपने घर में रखना जायज़ करार नहीं देते थे, ये इनका फतवा था। इतने इनके सख्त फतवे हुए थे कि हज़रत उमर के दौर में इनको ओहदा मिला था, लेकिन बिलआख़िर इनको पकड़ कर मदीना से करीब एक सबर्ब्स यानी नवाही जगह पर झोंपड़ी बना दी कि आप इधर रहिए, आप जैसे बंदे नहीं कि हुकूमत चला सकते, ये भी लोग गुजरे हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको मुझे इस सारे मामले में अपनी इसलाह की तौफीक अता फरमाए, और उसके बाद आप देखिए कि मुनाफिकों का कुरान सुनकर अनकंफर्टेबल फील होना, ये आपके मेरे अपने लिए है। और गज़वे तबूक से सिनेरियो से ये चूँकि आखिरी आयात हैं जो इस रुकू की 66 के अराउंड, तो याद रखिए कि उस वक़्त मदीना की फ़िज़ा कुछ ऐसी बन चुकी थी कि अब अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का आखिरी दौर है। इस्लाम खूब पनप चुका, मक्का फतह हो गया, इतनी फतूहात आ गई कि जो पुराने लोगों में से वो लोग जो मंझे हुए थे, जिनको अल्लाह ताला ने ठुका था, वो आज भी ठुके हुए थे, और फिर बीच में कितने आए और कितने गए। ये सब केयरलेस एटीट्यूड वालों की कहानियां हैं, जो लोग नबी के साथ हर जगह यस सर कहते थे, आपके साथ चलते थे, वो साहिबे अजीमत बन गए, उनके दर्जे फिर और बढ़ गए, अभी तक बैठे हैं, अभी तक खड़े हैं, अब लोग नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं आते, और जो अपने घरों में बैठे हीलों से बहानों से उजर से, अल्लाह कहता है ये मुनाफिक है, इनको निकाल दो, सबको जिम्मेदारान से निकाल दो, इनमें एक जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ये किसी और की क्या लेंगे। तो याद रखिए कि बैठ रहने वाले मुनाफिकों ने रसूलुल्लाह और असहाबे रसूल के अमल को कमतर जाहिर करना चाहा, वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, जिसके अपने बाल नहीं होते हो कहती दूसरों के क्या हो, इनके भी उतार दो। ऐसे लोगों को भी दूसरों का अमल करना बुरा लगता हो, कहते तो आप क्या हर वक्त जैस कह देते हैं, आप किसी बात पे नो नहीं कहते, आपको पता नहीं क्या क्या ज़रूरत है ये कहने की। एक दफ़ा हम किसी जगह थे, बड़ा मज़ा आता है मुझे सोच के, पहला कोर्स था उधर भी दौरे कुरान के बाद, तो नया कोर्स जो शुरू किया तो उसकी फ़ीस सिलेक्ट हो रही थी, तो सारे जिम्मेदारान जो भी टीम शुरा थी उस वक्त जिम्मेदार तो कम ही थे अंसार थे, तो वो बैठे थे, तो मैंने सवाल किया कि आप मशवरा दीजिए कि इस मॉल को और इस शहर के अंदर क्या लोगों की अफोर्डेबिलिटी है, क्या फ़ीस रखनी चाहिए जो आप कोर्स ऑफर कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स भी बहुत बड़े अच्छे एक होटल और बड़े लग्जरियस माहौल में था, तो जो सबसे पहली ही थी ना वो बोली कहती 1,000 पाउंड महीने का, तो बाकियों ने बाद में उसको खूब कूटा होगा कि क्या ज़रूरत है इतना, यहाँ तो लोग 20-25 भी नहीं देते। नहीं समझे आप, जिसका जितना दिल होता है ना वो उतनी बात करता है, और मैंने देखा है कि खुले दिल वालों से पूछना चाहिए और उतने पे लोग सेट हो जाते हैं। फिर ऐसी भी जगह मेरे पास जहन में कि जहाँ लोग कहते थे यहाँ पैसे नहीं लोग देंगे, इधर तो तौबा करे मुफ्त किताब बांट दो तो लोग ले लेते हैं, 1 यूरो की नहीं लेते, 1 पाउंड 1 डॉलर की नहीं लेते, यकीन करें वहाँ से सबसे ज़्यादा लोग फीस देने वाले हैं। आज भी लोगों ने उनको अंडर एस्टिमेट किया था, क्योंकि जो मशवरे वाले लोग होते हैं वो खुद ऐसे होते हैं, हमेशा टॉप मोस्ट पे बेस्ट कर्जियस लोगों को रखे कि असल दीन का काम करने में क्वालिटीज़ कौन सी देखने की ज़रूरत है, कौन किस जगह। एक गाड़ी है उसमें एक ड्राइविंग सीट पे बैठा है, कुछ सीटों पे बैठे हैं, कुछ गाड़ी है उसमें एक स्टेयरिंग है ना, इंजन है, फिर उसमें गेयर है और सीटें भी हैं, हर एक का अपना रोल है। अब इंजन वाली जगह पे आप सीटों वाला नरम फॉर्म लगा दें और ड्राइविंग सीट को आप पीछे वाली सीटों का कर दें तो गाड़ी तो ख़राब हो जाएगी, पीछे की सीटों को आप सख्त कर दें। ज़िंदगी में हमेशा फ्रंट एंड पे जो मेन लोग हैं ना वो कर्जियस होने चाहिए। ड्राइवर ही अगर ढीला ढाला है तो बताइए कि वो गाड़ी तो जाके पहाड़ी में गिरेगी ना। तो ये सारी बातें आपको इस सारे सिनेरियो में समझा रही हूँ कि नबी के दौर में लोगों को क्या चीज़ मिली कि वो खड़े हो गए, और आज हमारे अंदर कमी क्या है। कुरान पे कुरान, पारों पे पारे, फिर उसके बाद शक्कर पारे आएंगे, हर आखिरी अशरा देखिएगा ज़रा क्या रौनक होनी है रात को घरों में, यहाँ से नमक पारे आ रहे हैं, कहीं से जलेबियाँ आ रही हैं, कहीं लड्डू, कहीं आइडियल का केक आ रहा है, अभी तक आता है, मैं गवाही दे सकती हूँ 20 साल पहले भी यही आता था जब कुरान पूरे होते थे। पता नहीं उसमें से कोई ईमान भी आता है कि नहीं आता, क्या लेके उठते हैं, दौरे कुरान ख़त्म हो रहा है, क्या बांटेंगे, खाएंगे, आने वालों को कुछ खाना देना है कि नहीं, ये बातें हर जगह शुरू हो जाती हैं 15 पारों के बाद। लेके क्या गए हम, कई लोग सिर्फ शक्कर पारे ही ले जाएंगे और कुछ और कुछ और। याद रखिए कुरान पढ़ना और पढ़ाना कोई छोटी बात नहीं, वो माँ हुआ बिल हज़्ल, सूरह तारिक की आखिरी आयत दिल पे लिखा करें, ये कोई हंसी मजाक ठट्ठा नहीं है, कुरान पढ़ने वाले आम लोग हो गए तो फिर आम लोगों को तो कुछ और बिलो द लेवल जाना पड़ेगा। कुरान पढ़ाने वाले अगर बिलो द लेवल आ गए या इवन चले ग्राउंड फ्लोर पे ही आ गए तो बाकी लोग तो ऊपर जाएंगे नहीं। देखिए पानी ऊपर चढ़ाना होता है ना तो टैंकियाँ ऊपर क्यों बनाते हैं? मैं अक्सर सोचा करती थी बचपन में ये बात। अब पता चला कि पानी का जो मेन सोर्स जहाँ होगा उससे ऊपर आप नहीं ले जा सकते, इसलिए शहरों में जो बड़ी बड़ी टैंकियाँ बनी होती हैं ताकि पानी ऊपर तक जाए जहाँ तक घर हैं। ये जो दीन वाले होते हैं ना मेरे जैसे पढ़ने और पढ़ाने के शौकीन, ये स्टैंडर्ड हैं। आप इनको अगर फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर पे रखेंगे तो बाकी लोग बस उसे इतना नीचे तक ही जाएंगे, इसे ऊपर जा ही नहीं सकते। वो तो दर्स देते हैं जी, वो तो पढ़ाते हैं जी, उनके घर में तो ये होता है जी, उनके तो बच्चे ऐसे, उनके तो मियाँ ऐसे, उनकी तो शादियाँ देखी, उनका अपना अमल तो देखिए, ये वो है। ये हैं वो बातें जो वहाँ छांटते थे ये लोग। अब आपको समझ आई होगी ये कौन सा गिरोह है। ये आपके अपनी दोस्त हैं और आपके अपने ही होंगे बाद में जो बाहर आपकी बातों पर ये बातें करते हैं कि ज़रा देखा आपने शादी पे गई थी आप इनके, और आपने ज़रा इनका घर देखा, इनकी बेटी देखी आपने, और इनके मियाँ साहब का हुलिया देखे, और आपने इनके कारोबार देखे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ने तो हिसाब बाद में करना है, लोग पहले आपका हिसाब करेंगे। पहले दौर की माएँ अपने बच्चे को जब ज़रा कोई कोसना देती थी ना, ढीला देखती थी और उसको जोश दिलाती थी तो कहती थी अल्लाह तुझे किसी रावी के हाथ लगा दे। जरा तादील करते थे किसी एक हदीस को लेने से पहले, ये क्यों किया वो क्यों किया। इमाम बुखारी के वाक़ा आता है कि एक दफ़ा कहीं अपना हदीस लेने गए, पता चला फलां शख्स के पास कोई हदीस है, तो देखा तो वो ऐसे अपने दुपट्टे को ना कपड़े को ऐसे करके तो घोड़े को बुला रहा है, जैसे बुलाते हैं ना ऐसे ऐसे करके। तो जब घोड़ा करीब आया तो उसने उसकी नकेल पकड़ी तो दुपट्टा या कपड़ा छोड़ दिया, कुछ भी नहीं था, धोखा दिया। इमाम बुखारी वहाँ से वापस चले गए, कहने लगे जो शख्स एक घोड़े एक जानवर के साथ झूठ बोल सकता है वो नबी के नाम पर भी झूठ बोल सकता है। 1,000 अशरफियाँ पानी में डाल दी थी इमाम बुखारी ने कि अगर इस वक्त मैंने कहा ये मेरी है तो कोई नहीं मानेगा, मैं हदीस देने वाला हूँ। मेरे किरदार पे आज धब्बा पड़ गया ना कि इमाम बुखारी ने फलां शख्स की 1,000 अशरफियाँ चोरी कर ली थी, मेरा कैरियर गया। ऐसी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है फिर यहाँ इस कुर्सी पर बैठी है, फिर भी बच जाए तो बड़ी बात है। लोगों को शिकवे तो देखे ना नबी से हो रहे हैं। एक चादर गुम गई थी एक मैदान वाले गनीमत में, लोगों ने कहा अल्लाह के नबी ने ले ली होगी, अल्लाह ने कुरान उतार दिया, क्या तुम नबी के बारे में सोचते हो? ये पीछे पढ़ के आए सूरह अनफाल की आयत, नबी ऐसे नहीं होते, और अगर नबी ऐसे हो गए तो बाकी कैसे होंगे। तो बहरहाल उनकी बातें भी किताबों में लिखी हुई हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है इस वक्त, लेकिन हम अपने आप को चेक करें और ज़ुबान को पान दें। ज़िब्त मौत आसान तरीन बात है, दिल में भी अगर कभी कोई बात आती है औज़ुबिल्लाह पढ़ के पीछे हो जाए। हमारे असलाफ दुआ किया करते थे कि अल्लाह हमारे उलमा हमारे बड़ों हमारे उस्तादों की कोई गलती हमारे सामने ना आए, अल्लाह उनके ऐबों को हमसे छुपा ले, हमारे माँ बाप के ऐब हमसे छुपा ले, क्योंकि ये फितने होते हैं। शैतान कैसे ऐसी चीज़ों में ला के आपको साफ़ सुथरा करता है, अब सारे मुर्दे उनके ऊपर डालकर अपने आप को नहाए धोए साफ़ सुथरे बनाकर बैठे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसी बातें करके नबी के ज़रिए आपको मुझे क्या बता दिया कि याद रखो तुम्हारे इर्द गिर्द वाले बहुत सारे लोग ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हारे बारे में बातें करते होंगे, तो उनको सुना दो कि उनका ये सब बातें करना क्या है। किसी ने कहा जी ये देखो ज़रा ये साहिब कहते हैं कि रोम के महल और उसके क़िले फ़तेह करने जा रहे हैं और इनकी हालत भी अफसोस है। लफ्ज़ मेरे सामने लिखे हुए यजुन खास हैं यफ्तः कसूर रूमी व खसूनहा है हाता जाइए अरबी की तफसीर इब्न कसीर खोलिए जिल्द 4 के पेज 72 पे ये जुमला लिखा हुआ है। अल्लाह के नबी के बारे में वो जो बातें करते थे कोई नई बातें नहीं, अपने लीडर्स के बारे में उल्टी सीधी बातें करना। एक और सुना देती हूँ, मा अरा कर्रना हाउलाई इल्ला रग़बना बुतूनन व कसबना अलसिनतना व अजनबना इंद लिक़ाई। कहेंगे क्या तुम समझते हो कि रूमियों के साथ लड़ाई करना ऐसा ही है जैसे अरबों के साथ लड़ना? कोई कहता आज खाने को नहीं है, वॉशरूम में जाने की इजाज़त नहीं है, और चले हैं ये कैसरों किसरा के ख़जाने ले रहे हैं। पता नहीं क्या ज़रूरत थी इतनी बड़े प्रोजेक्ट को लेने की, क्या ज़रूरत ही है ही नहीं थे तो लेने क्या थे, पहला तो संभाल लें। ये टोन औज़ुबिल्लाह पढ़ा करें। और जब पूछा ये क्या बातें हो रही थी इधर, और रियल में हुआ तबूक के सफ़र के आने जाने में ऐसे वाक़ियात हुए, तो इन नमक नहूद व नलब नहीं नहीं हम तो बस खेल रहे थे वक्त गुजार रहे थे। आप कहते फिर सफ़र भी तो ऐसे नहीं कटता ना। अल्लाह कहता है तुम्हें अल्लाह और रसूल ही मिला हंसी मजाक उड़ाने के लिए, तो याद रखिए कि अल्लाह और रसूल की बात हमेशा किसी आदमी की ज़ुबान से बुलंद होती है और वहाँ से फिर जोते होते आम पब्लिक तक चली जाती है। अगर करीब वाले बात ना करें तो दूर वालों को ज़रूरत नहीं होती बात करने की। तो अल्लाह ताला में निफाक और इर्तदाद की ये सारी बातों से बचाए। तो आपके मेरे लिए इस सारे में से जो अमल की बातें हैं वो नोट कर लेते हैं। इसमें जितनी अमल की बातें हैं ये अल्लाह को राज़ी करने वाली बातें हैं और अल्लाह की नाराज़गी वाली बातें हैं, ये निफाक अली हमने नहीं करनी। फिर अल्लाह की राह में खर्च करना है, ईमान वालों के लिए बायस रहमत बनना है, ईमान वालों पर एतमाद करना है, दूसरों को राज़ी करने के लिए कस्में नहीं खानी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा बातें नहीं करनी, और अल्लाह और रसूल को राज़ी करना अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाना है।